الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ لوگ ہر وینسڈے کو الحمدللہ حدیث کا درس سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے سننے کو اور اس پر عمل کرنے کو قبول فرمائے. جب ہم عمل کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرماتے چلے جائیں گے، اور اصلاح کے نتیجے میں اللہ سے ہمارا تعلق، کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور یہی تعلق ہمارے دین اور دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے. جتنا ہم قرآن اور حدیث کو سنیں گے، اتنا ہی ہمارے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنف اور ٹائپس کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت. بہت اہم پروگرام ہے آج کا بھی، غور سے سننے کا کام ہے انشاءاللہ. دل میں اپنی اولاد کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اس طرح پیدا کرنا اللہ کی حکمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام مرد عورت کو پیدا کر کے، اس کے بعد ان کی نسلوں میں کسی کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے، اور کسی کو دونوں بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، اور کسی کو نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی. یہ تقسیم بھی اللہ کی حکمت کی نشانی ہے. اسی تقسیم کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں سورہ شورا نمبر آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا او یزوجہم ذکرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکی عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو لڑکے و لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بانج کر دیتے ہیں، بالکل عطا نہیں کرتے. نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے، لاکھ کوشش کر لے مگر اولاد نہیں ہوتی. یہ سب اللہ کی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہے، مبنی ہے. جس کے لیے جو مناسب اللہ سمجھتے ہیں، یہ سب اللہ کی، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. لڑکیاں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لڑکے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لڑکوں کی بھی ضرورت ہے، لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے. मर्द औरतों के मोहताज है, औरतें मर्दों का मोहताज है। अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी हिकमत से दुनिया में एक ऐसा निजाम कायम फरमाया है जिसमें दोनों की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, दोनों की पैदाइश अल्लाह के हिकमत पर मबनी है। उसमें जर्रा बराबर किसी को अल्लाह पर एतराज और क्वेश्चन करने का हक नहीं है। पीपल हैव नो राइट टू क्वेश्चन अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला टेस्टिंग पीपल टू गिव ओनली बॉयज और गिव ओनली डॉटर्स और गिव बोथ ऑफ देम और ही डोंट गिव। अल्लाह वांट टू टेस्ट द पीपल हाउ मच दे हैव पेशेंस एंड हाउ मच दे फुलफिल द राइट्स ऑफ अल्लाह तबारक व ताला। मुसलमानों में बाज मुसलमान आपको ऐसे भी नजर आएंगे कि उनके यहां लड़के की बड़ी तमन्नाएं होती है, लड़कियां तो है लड़का भी हो जाए, लड़कियां तो है लड़का भी हो जाए। जब लड़का पैदा हो जाता है तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, दुनिया का कानून है, बड़े जोर और शोर से अजीज व अकारिब दोस्त अहबाब को व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए, फोन के जरिए से, अभी तो हुआ ही है, आधा घंटा भी नहीं हुआ उससे पहले सारी दुनिया में मैसेजेस पहुंच जाते हैं, अल्लाह ने मेरे घर पर लड़का दिया। और फिर प्रोग्राम शुरू होते हैं, खुशी में मिठाई तकसीम की जाती है, बड़े एहतमाम के साथ शानदार तरीके से उस लड़के का अकीका किया जाता है, हर जगह पर उसकी पैदाइश का तस्करा, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ, फिर उसकी परवरिश का खास एहतमाम किया जाता है, स्पेशल क्लोथ्स एंड स्पेशल थिंग्स। जरा बराबर लड़का अगर बीमार हो जाए तो फौरन डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर की तरफ दौड़ते हैं, कभी हॉस्पिटल और कभी हकीम और कभी मौलाना साहब, हर एक से कांटेक्ट चालू है, कहीं मर न जाए। समझ में आई बात, कहीं मर न जाए, जाहिरी बात है हर माँ बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होती। किसी के यहां लड़की पैदा हो जाए तो वहां किस खुशी, किसी भी किस्म की खुशी का इजहार नहीं किया जाता, जैसे लड़के के बारे में न किसी से तस्करा करते। हम सिर्फ अपने आप को कयास न करें और माहौल को देखें, हजारों हैं। हमारे यहां लड़की पैदा हुई, अगर कोई पूछ भी ले तो जल्दी से बताने के लिए तैयार नहीं है, टेक इट टाइम टेक इट इजी, बहुत जरा दो चार पांच सेकंड के बाद कहते लड़की हुई यार। अगर बताते हैं तो वो भी बहुत आहिस्ता आवाज में सॉफ्टली और डबे डबे अंदाज में बताते हैं लड़की पैदा हुई है। समझे, लड़की की पैदाइश पर कोई खुशी नहीं है, कोई इजहार मसर्रत नहीं, न मिठाई की तकसीम की जाती है, न लड्डू बांटे जाते हैं, न अकीके का अहतमाम किया जाता है। अकीका करते भी हैं तो बस जानवर खरीद कर उसके गले पर छुरी फेर कर किसी मदरसे में भेज दो, या मदरसे में पैसे भेज दो, खा लेना भाई। और लड़का हुआ तो घर घर जाते हकीके का कुछ लड़का हुआ होता, लड़के से मोहब्बत ज्यादा होती है बनिस्बत लड़की से। गुजिश्ता कल एक औरत का फोन आया, उसके 15 साल का बेटा उसको बस केमिस्ट में भेजा दवा लेने के लिए, वहीं पर वो कलेप्स हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया उसका, और एम्बुलेंस के आने में देर हो गई तो फिर दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया, तो कोमा में चला गया। तो वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं सारे, मेरा बेटा मेरा बेटा। मोहब्बत जरूर होती और वो भी 15 साल का बिल्कुल यंग होता है, लेकिन बच्ची की पैदाइश में बाज़ औकात शौहर अपनी बीवी से नाराज हो जाते हैं, बीवी से बोलना छोड़ देते हैं। मेरे पास तो हजारों केस है, हजारों केस है। हालांकि आदमी को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि इस औरत के इख्तियार में कुछ नहीं। अल्लाह कह रहा है मैं अंदर में बच्ची भी बनाता हूं, मैं अंदर बच्चा भी बनाता हूं, लड़की भी मैं ही पैदा करता हूं, लड़का भी। न उसके इख्तियार में लड़की लड़का लाना है, न शौहर के इख्तियार में है। फिर क्या बात हुई, दोनों बराबर है। अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह की मसलियत है, वही पैदा करने वाला। उसने लड़का पैदा करना चाहा तो लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा करनी चाहिए तो लड़की पैदा हो गई। लिहाजा बीवी पर नाराज होना और उससे बोलचाल बंद कर देना, कितनी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। दोस्त अहबाब से छुपे फिरते हैं, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है ये बात, अल्लाह कुरान में कह रहा है। जो अभी मैंने शुरू में आयत पढ़ी उसमें अल्लाह यही कह रहा है, मेरे सामने ऐसे वाकयात भी है जब किसी के घर एक लड़की हुई, फिर दूसरी लड़की हुई, तीसरी लड़की हुई, तो शौहर ने बीवी को कह दिया अगर आइंदा तेरी लड़की पैदा हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा। तो उसके हाथ में, ये किस कदर ज्यादती की बात है, ये जहालत है। मुसलमानों में ऐसे लोग भी मौजूद है जो लड़की की पैदाइश पर नाराज होते हैं। अल्लाह ने इसी बात को साफ करने के लिए, जो जमाने जाहिलियत में थी लड़की से नाराज होना, अल्लाह ने इसीलिए अपने नबी के घर में पहले चार बेटियां दी, बाद में लड़का दिया। देखो नबी के घर में, जिस नबी की ताकत जन्नती 100 मर्दों के बराबर है, उनको चार बेटियां दी है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमतु ज़हरा, ताकि उम्मत को पता चले कि लड़की भी कोई नेमत है। न नबी के हाथ में है, न किसी वली के हाथ में है, न आम, न खास, न जाहिल, न पढ़े लिखे, किसी के हाथ में नहीं, न मर्द में, न औरत में। लड़की पैदा करना, लड़का पैदा करना, ये अल्लाह के हाथ में है। हाँ, इसको जिल्लत समझते हैं, ऐब समझते हैं, और लड़के की पैदाइश को बाइज्जत और फखर समझते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने यह अमल काफिरों का नकल किया है, मक्का के मुशरिकीन मक्का का यह अमल नकल किया है। इस्लाम से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, जमाने जाहिलियत में अरब के कुफार, अरब के मुशरिकीन का यह दस्तूर था, जब उनके यहां लड़की पैदा होती तो लड़की का बाप उस बच्ची की पैदाइश को अपने लिए जिल्लत समझता था, और बच्चे की विलादत से चंद रोज पहले बच्ची की, यानी बच्चे के जो भी पैदा होने वाला, पता तो है नहीं ना उस जमाने में कहां थे ये सब सोनोग्राफी वगैरह, पैदा होने के कुछ दिन पहले बाप छुप जाता था। बीवी जब बच्चा पैदा करे, यानी व्हेन शी गिव बर्थ, बिफोर फ्यू डेज बिफोर, द हस्बैंड यूज्ड टू हाइड, जमाने जाहिलियत में लोगों से छुपा छुपा फिरता था, मालूम नहीं मेरे घर में क्या पैदा होगा, अभी तो हुआ नहीं, क्या होगा। अगर लड़का हो जाता तो उसको इज्जत समझता, लड़की पैदा हो जाती तो उसको रुसवाई समझता था, और ये सोचता कि लड़की पैदा हुई तो मैं लोगों के सामने क्या जवाब दूंगा, कहीं मेरी जिल्लत हो जाएगी, मेरी रुसवाई हो जाएगी, इसलिए वो छुपता था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जैसा जैसा पता चलता, बाद में वो घर आता, लड़की हुई तो नहीं आता, लड़का होता तो आता था।
और वो अपनी जहालत में यहां तक भर गए कि वो लड़की की पैदाइश के बाद ये सोचते थे कि इस लड़की को जिंदा कहां रखूं, क्योंकि अभी लोगों में जवाब देना है क्या पैदा हुआ। जब तक ये जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहेगी, मेरे लिए रुसवाई है, डिसग्रेसनेस है, मेरे लिए जिल्लत है, या फिर मैं उसको कत्ल कर दूं या उसको मैं जिंदा दफन कर दूं। दो में से एक सूरत होती थी। अभी तो वहां हरम बन गया। पहले जमाने में हमने देखा है वो कब्रिस्तान जहां लड़कियों को जिंदा दफन किया गया, 100 से ज्यादा जिंदा लड़कियों, बिल्कुल हरम से निकलते हुए वो जगह आज तक हमें मालूम है, जहां जमाने जाहिलियत में छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था और वो बाउंड्री की हुई थी उस जगह की। अब वहां तो हरम के मार्बल आ गए लेकिन जगह अभी तक पता है। अल्लाह बिल्ला, अल्लाह की पनाह। अपनी मुसीबत से, यानी ये मुसीबत समझते थे कैसे जान छुड़ा, तो अपनी बच्चियों को बाज लोग तो जिंदा दफन कर देते और बाज लोग तो पैदा होते ही गला दबा के मार देते थे, जैसे बच्ची हुई फौरन कत्ल, फिर उसको वही मिट्टी में दफन कर दिया। होता इस कदर जुल्म था गर्ल्स पर, बच्चियों पर। कुरान करीब ने इस बात को अपने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान किया है, सूरत नहल की आयत नंबर 58 में और 59 में अल्लाह फरमाते हैं, वइजा बुशिर अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम। जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती तो सारे दिन उनका चेहरा बेरोनक हो जाता था, काला हो जाता था, दिल दिल में घुटते रहते थे, यतवारा मिनल कौम मिन सू मा बुशिर बिह अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। जिस चीज की उनको बशारत दी गई उसकी आर में लोगों से छुपते फिरते थे, बताना नहीं चाहते बच्ची पैदा हो, या तो जिल्लत को कबूल करके उसको रहने देते या फिर उसको गला घोंट करके मिट्टी में दफन कर देते थे। ये बहुत ही बुरा काम ये लोग करते थे जमाने जाहिलियत बेटियों के साथ। अल्लाह ने इस उन मुशरिकीन मक्का के इस अमल को कुरान में बयान फरमाया है कि ये काम उनका था। अब क्यों ऐसा क्यों करते थे, मुफस्सिरीन ने लिखा है वो बच्ची को बेटी को अपने लिए जिल्लत का बाइस समझते थे और बेटा अपने लिए इज्जत समझते थे, इसलिए बेटी को जिंदा दफन कर। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा ये लोग लड़की पैदा होने को नहुसत समझते थे कि घर में पोएट्री गरीबी फक्र फाका हो जाएगा, और लड़का हो तो फिर बरकत होगी, फरमाया लड़की होगी सारी उम्र हमें कमा के खिलाना पड़ेगा, इसलिए बोझ समझते थे। दे यूज टू थिंक दिस इज द गर्ल्स इज बर्डन ऑन अस। इस वजह से वो जिंदा दफन कर देते थे बेटियों को या जान से मारकर उसको मिट्टी में दफन कर देते थे। बाजे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुशरिकीन मक्का ये भी कहते थे कि उनका कीड़ा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, द एंजल्स आर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। जब किसी के यहां लड़की पैदा होती तो वो अपने उस अकीदे की बुनियाद पर जो उनका अकीदा था कि ये तो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, बेटियां तो अल्लाह की है, वो क्या समझते थे बेटियां अल्लाह की और बेटे हमारे हैं, अगर बेटे हो तो हमारे, बेटी हो तो अल्लाह के, तो अब उसको अल्लाह के है तो अल्लाह के यहां मार के पहुंचा दो, उसको मार देते थे, अल्लाह के यहां पहुंच गई अल्लाह की बेटी। अल्लाह तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह तक पहुंचाने के लिए लड़कियों को, बेटियों को जिंदा दफन करते थे ताकि अंदर में जिंदा जिंदा अल्लाह के पास पहुंच जाए।
अल्लाह,
ये तो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह तक पहुंच जाए। जिल्लत की वजह से या फक्र फाका की वजह से या गलत अकीदे की वजह से ये लोग पहले हराम करते थे, एक जुल्म करते थे अपनी लड़कियों पर, अपनी बेटियों पर। जमाने जाहिलियत में बाज लोगों ने तो अपनी 10 बेटियां, बाज लोगों ने अपनी 12 डॉटर्स को जिंदा अपने हाथ से दफन किया एक एक घर में। हदीस में वाकया लिखे, एक आदमी मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। जाहिरी बात है कि जमाने जाहिलियत में जितने गुनाह किए हैं, व्हाटएवर दे हैव डन इन द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, इस्लाम लाने से, अल इस्लाम तहदीमु मा कान कबला, इस्लाम उन तमाम पिछले गुनाहों को डिलीट कर देता है। इस्लाम कबूल करने से पिछले सारे, द ऑल द सिंस been forgiven, whatever they have done in the time of jahiliya before accept Islam. So Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ke paas jab Islam le aaye to apna waqiya sunaya rote hue ke Allah ke nabi, meri ek beti thi, raat mein mujhe neend nahi aati, Islam to qabul kar liya lekin raat mein neend aati nahi hai, main sochta hu to meri neend ud jati hai. Farmaya, मेरी बेटी थी, थोड़ी बड़ी हो गई, मगर मैं पसंद नहीं करता था कि मेरे घर में लड़की जिंदा बाकी रहे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मुझे पानी पिलाती, काम करती, मेरे पैर दबाती, छोटी बच्ची, लेकिन मैं एक दिन उसको उसकी माँ से बहाना करके ले गया। मैंने उससे कहा, चलो जरा घूमने के लिए हम चलते हैं, घूमने के लिए। फिर मैं उसको जंगल में ले गया, वहां पर मैंने पहले से एक कुआं खोदा हुआ था, पहले से मैंने कब्र जैसा कुआं खोद रखा। वहां जाकर मैंने उसको कहा कि ये कुआं खोदना, मैं चाहता हूं ताकि अंदर से पानी निकले, अंदर से क्या निकले, पानी निकले। मैं तुम्हें नीचे उतारता हूं, तुम डोल में मिट्टी भरना, फिर तुम नीचे जाओ, अंदर में मैं क्या करता हूं, डोल डालूंगा, तुम मिट्टी अंदर में भरो, मैं डोल को बाहर खींच कर मिट्टी खाली करके फिर डोल को अंदर भेजूंगा। बेटी को अंदर भेजा, जब बेटी ने कहना मान लिया, बाप का कहना था कि मेरा बाप कुआं खोद रहा, वो तो नीचे उतर गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी, ऊपर से मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। बेटी ने कहा, बाप क्या कर रहे, व्हाट आर यू डूइंग, मुझ पर मिट्टी गिर रही है। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था कि मुझ पर उसकी बात का जर्रा बराबर असर नहीं हुआ, और मैं बराबर मिट्टी डालता रहा। वो मिट्टी पहले उसके घुटने तक आई, फिर उसके पेट तक, वो निकल नहीं सकती थी अब तो ना, तो मिट्टी उसके घुटने तक, फिर गर्दन तक, फिर आखिर सर के ऊपर तक आ गई, यहां तक कि वो जमीन के बराबर हो गई। वो बेटी मेरी अंदर चीखो पुकार कर रही है, शी वॉज स्क्रीमिंग। ऐसे मौत का देना कोई आसान काम, छोटी बच्ची का, और ऐसी जान जाए, बड़े बड़े लोगों के दिल हिल जाते हैं, लेकिन उस आदमी का दिल नहीं हिला। कैसे उसको नींद आती हो, आखिर उसकी चीखो पुकार भी खत्म हो गई, इसलिए कि मर गई अब तो अंदर में। तो मैं उसको ऐसे ही जिंदा दफन करके वापस आ गया। फरमाया, मैंने जब ये वाकिया रोते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, आपकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हाय तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, इस तरह भी लोग करते थे, अगर न रखना होता किसी को दे देते, लेकिन इस तरह जिंदा दफन करना। आज जो मुसलमान बेटी की पैदाइश पर नफरत का इजहार करते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, और बच्ची की पैदाइश को अपने लिए बाई से नफरत और बाई से आर और जिल्लत समझते हैं, वो गौर कर ले कि उनका ये अमल उन लोगों के मुशाबे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों से नफरत की है। याद रखो, बेटी भी अल्लाह की नेमत, बेटा भी अल्लाह की नेमत है। दोनों के देने में अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा इम्तिहान में पास होता है या नहीं। अल्लाह ने जिस तरह बच्ची की पैदाइश भी रहमत, बच्ची की पैदाइश तो भाई से और ज्यादा रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के साथ कितनी मोहब्बत का इजहार फरमा, कितनी शफ़क़त। हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी चाहिए। कितना प्यार था अपनी बेटियों के साथ, खुसूसन उनमें अपनी बेटी फातिमतुज़्ज़हरा, जो आपकी उम्र, आपकी पैदा, आपकी इंतकाल तक जिंदा थी, और आपके इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, बाकी का तो इंतकाल हो गया था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम, उनमें से 3 बेटियां जन्नतुल बकी में एक ही जगह दफन है, अल्लाह के नबी ने दफन किया। आप जन्नतुल बकी के बड़े दरवाजे से दाखिल होंगे तो आप सामने जी, बिल्कुल सामने बेटियों की कब्रें हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की है, पहले बेटियों की कब्र है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बाज लोग कहते थोड़ा अंदर से जा, हजरत हसन उनके बेटे वहां हैं, बाज कहते हैं इनके साथ ही है, 4 बेटियां साथ में हैं, बाज कहते थोड़ा इधर से छोटी सी जगह है। जब आप देखेंगे वहां बोर्ड लगा हुआ है दुआओं का, बस उसके पीछे जो जगह है वहां हजरत फातिमा है और इधर 3 है। और बाज कहते हैं हजरत फातिमा की कब्र उसी घर के अंदर में है, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का परोस वाला जो घर है वो हजरत फातिमा हजरत अली का मकान था, जहां से वो ताला लगा हुआ है। ये हजरत फातिमा असहाब सुफा के सामने जो जगह है वो जगह हजरत फातिमा का मकान था, हजरत अली का। अब तक वो हुजरा है, अब तक वो मकान बाकी है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इस तरीके से वहां दफन किया गया। तो अलग अलग कौल है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब भी सफर में जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अखीर में मिलकर जाते थे, जब वापस आते थे सफर से, पहले मस्जिद जाते फिर अपनी बेटी से मिलते थे, बीवियों से पहले अपनी बेटी से मिलते थे। कितनी मोहब्बत थी। और फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने इरादा किया था कि मैं, बुखारी शरीफ में है कि मैं हजरत फातिमा के होते दूसरी भी शादी करूं। अल्लाह के नबी को पता चला तो सहाबा किराम को बुलाया और फरमाया मैं मना नहीं करता हूं हजरत अली को दूसरी शादी करने से, फादर इन लॉसिंग, मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं दूसरी शादी करने से, लेकिन लेकिन दुश्मन की बेटी, यानी वो चाहते थे अबू जहल की बेटी के साथ, दुश्मन की बेटी और दोस्त की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती, वो शादी करना चाहे मैं अलाउ करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी को मेरे घर भेज दे। कितनी मोहब्बत थी। फिर फरमाया मेरी बेटी को तकलीफ देना मुझे तकलीफ देना है। अल्फातिमा बिजातुम मिन्नी, वो मेरे बदन का टुकड़ा है। बेटी से इतनी मोहब्बत। हां तो अपनी बेटियों से हुस्ने सुलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कीजिए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों से मोहब्बत की। हदीस में आता अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बहनें हो, और वो उनके साथ एहसान और सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे और उनके साथ अच्छा मामला करे, उनके वजूद को अपने लिए जिल्लत न समझे, तो उनके बदले वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है। ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہو یا تین بہنیں ہو یا دو بیٹیاں ہو یا دو بہنیں ہو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ان کے حقوق ادا کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کو ذلت نہ سمجھے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اگر دو بیٹیاں، فرمایا ہاں دو بیٹیاں ہو تو بھی، کسی نے کہا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، آپ نے فرمایا ایک شخص ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ہاں بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے پرورش کرتے رہے تو یہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے دیوار بن جائے گی، آر بن جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو لڑکیاں تھیں، یہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس عورت نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ کھانا ہو تو دے دو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، کھجور تھی۔ کیا جی، ہم تو فریج کھولو تو بہت ملے گا، ان کے پاس صرف کھجور تھی، میں اندر گئی کھجور لائی، میں نے کھجور اس کو دے دی، اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، کھجور بھی ایک ہی تھی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا دوسری کو دے دیا اور خود ماں اٹھی نہیں کھایا، حالانکہ وہ بھی بھوکی تھی، بڑے آدمی بھوکے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بچیوں کی رعایت کی، خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا کہ خاتون آئی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے ان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو بچیوں کی پرورش کرنے کی نوبت آئے، those who look after the two daughters، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، وہ بچیاں ان کے لیے جہنم میں جانے اس کے لیے آر بن جائے گی، جہنم سے بچائے۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی نعمت ہے، اسی لیے یاد رکھو بیٹی کو لک آفٹر کرنے پر تین فضیلت ہے، بیٹی کو لک آفٹر کرنے پر تمام فضائل کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، بیٹی کے سارے فضائل کا خلاصہ، پہلی ایک ہے، نمبر ایک، اللہ تعالی ماں باپ کو دوزخ سے بچا لیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ اس ماں باپ سے راضی ہو کر ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر تین، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ تینوں فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا، تعلیم کی، صحیح راستے کی، نماز کی اور ضرورت پر ان کو خرچ کرنے کی، یہ ساری، ایسا نہیں کہ ان کو بگاڑ دو وہ جو چاہیں پھر کرتے رہے گناہ کا کام، نہیں، یہ نہیں، شریعت کے مطابق پرورش کریں اور ان کی شادی کرا دیں، پڑھایا لکھوایا سب کچھ، کھلایا پلایا سب کچھ۔ اس لیے کبھی بھی بچی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں، خوشی کا اظہار کریں، ان کو یہ تین فضیلتیں آخرت کے بعد حاصل ہوگی، جہنم سے پناہ، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیں، ضروری ہے، जो मोहब्बत के इजहार में बेटों के साथ किया जाता है बेटी से नहीं करता, वो क्या होता है, मां बाप अगर हेल्थी हालत में है, अपने अच्छी हालत में, बीमार नहीं है, अच्छी हालत में है, उस अच्छी हालत में जितना आप लड़के को हदिया दो इतना ही लड़की को देना है। वो सिंगल और डबल तो मरने के बाद मां बाप के माल में है, वो तो वसीयत में है, लेकिन जिंदगी में मां बाप जितना बेटे को हदिया दे उसको 5 लाख दिया, बच्ची को भी 5 लाख दे दो। मिसाल ये है। हम क्या करते हैं, नहीं बेटी को पहले से दे दिया, अब तेरा कुछ नहीं, खत्म। मरने के बाद जो हिस्सा वो तो अलग है, वो वसीयत है, वो मिरास है। मिरास में बेटे को डबल, बेटी को सिंगल मिलता है। आई बात समझ में? लेकिन हेल्थी हालत में मां बाप ठीक है, उसने अगर वो हदिया दे तो कभी ना इंसाफी नहीं करना, वरना अल्लाह की पकड़ हो जाएगी। हाँ, ये मसला लोगों को पता नहीं, वो यही समझते हैं बस बेटे को दिया करो, बेटी को देने की जरूरत नहीं, दिया तो भी थोड़ा दे दिया। वो मिराज जो है वो आप लिख के रख सकते हैं, अपनी मौजूदा हालात में हेल्थी होने की हालत में तकसीम करना जरूरी नहीं है। और औलाद अपने मां बाप को इस हेल्थी हालत में, मां बाप की हेल्थी हालत में फोर्स भी नहीं कर सकते, तुम्हारे मरने के बाद क्या मालूम वो भाई देगा कि नहीं देगा, बहन देगी कि नहीं देगी, अभी से दे दो, जरूरी नहीं है। हाँ, आप अपनी वसीयत नामा लिख लो, अलग बात है, लेकिन तकसीम करना जरूरी नहीं है। तकसीम आप के इंतकाल के बाद वो लिखाई के मुताबिक कर लेंगे, लेकिन ये मसला जरूर याद रखें कि अपनी सेहत और आफियत में जितना बेटे को हदिया दे इतना बेटी को देना पड़ेगा। ना इंसाफी कभी ना करें, जितना हक बेटे का है इतना हक बेटी का है। हाँ, रह गया इंतकाल के बाद, कुरान के मुताबिक वसीयत होगी, मिरास होगा कि बेटे को डबल होगा, बेटी को सिंगल होगा। ये जिंदगी में सब औलाद को बराबर देना जरूरी है। हमारे माशरे में क्या है, आजकल बेटियों की जिंदगी में माल और जायदाद तो देते ही नहीं, बच्चे को ज्यादा दे देते हैं। तेरे मकान में कमीले 50,000 और बेटी की शादी कर दी, कुछ भी नहीं, तुझे क्या देना बेटे को, क्योंकि बेटे से उम्मीद है ना कि वो लुक आफ्टर अस। आज भी वही मेंटेलिटी है, वो जमाने जाहिलियत में थी कि हमें कमाकर बेटियों को खिलाना पड़ेगा, ये तो कमाकर हमें खिलाएंगे, वही मेंटेलिटी है जो उन लोगों की थी। अब बेटा कमा के हमें खिलाएगा ना बुढ़ापे में, लेकिन ये नहीं जानता जिंदगी तेरी कितनी है, बाद में कहां जाना है, कहां जाना है। ये बेटियां हैं जो जहन्नम से आर बन जाएगी। ये सब कुछ बेटे को दे दिया, बेटियों को कुछ न दिया, तो ये जवाब दिया जाता है, हमने उनकी शादी तो कर दी, शादी में खर्चा तो कर दिया, जहेज में सब कुछ दे दिया, उसका हक अदा हो गया। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह जहेज देने से बेटी की मिरास खत्म नहीं होती, इसी तरह जहेज देने से उसको मां बाप के माल और जायदाद से महरूम करना भी जायज नहीं। जिस तरह आप बाप ने बेटे की शादी में खर्च किया, इस तरह बेटी की शादी में भी खर्च किया, उसमें क्या हुआ? तो ये आजकल जो इंसान के जहन में ये बात घुसी हुई है, बेटी को कम देना या बिल्कुल न देना ये जुल्म है। हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कता मीरास वारिसी कता अल्लाह मीरासो मिनल जन्नत। अल्लाह, जिस शख्स ने अपने वारिस को मीरास नहीं दिया, मिराज से महरूम कर दिया बेटियों को, अल्लाह जन्नत से उसका हिस्सा खत्म कर देंगे, उसका जन्नत में कुछ नहीं। उस मां बाप का फिर कब्र में क्या होगा जो अपनी वारिसों को महरूम करके चले गए। सब कुछ बेटे को दे दिया, बेटी को कुछ नहीं दिया, भाइयों ने बहनों को कुछ नहीं दिया। मरने के बाद उसमें कसूर बाप का है, मां का है। क्यों तुमने लिखा नहीं, क्यों तुमने साइन नहीं करवाई, क्यों तुमने दो आदमी के सामने लिखवाया नहीं वसीयतनामा कि मैं मेरी इतनी जायदाद है। मरने का तो पता नहीं है ना, कभी भी मौत आ सकती है, अचानक देखो ना कितने चले गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया एक रात तेरी गुजरने न पाए कि तेरे सराने में तेरा वसीयतनामा ना हो। वसीयतनामा कितना किसी को देना कितना लेना है ये अलग हो, अपने पास जायदाद कितनी है, मकान क्या है, पैसे कितने हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मेरी मौत हो जाए तो ये मेरे दो बेटे हैं दो बेटियां हैं, इतना उसको मिलेगा इतना इसको मिलेगा, खत्म बात। अब मरने के बाद उसी के मुताबिक पूरा किया जाएगा, झगड़ा ही खत्म। वरना वो अपना छुपाता है, वो अपना छुपाता है, वो अपना छुपाता है। जो एक बेटे को पता है क्या क्या है, बेटियों को पता नहीं, बहनों को पता नहीं, तो वो छुपा के सब ले लेता है। क्योंकि वो मां बाप के साथ रहता था, उसको सब पता पैसे किधर है। जैसे ही मौत हुई सारा निकाल लिया, हजारों पाओ। कितने वाकया अभी 6 महीने पहले कोविड में एक आदमी का इंतकाल हो गया, सेम थिंग। 15,000 to 20,000 pounds छोड़ के गया, चुपचाप ले लिया। क्या करें, मैं बेटियों का हिस्सा न बहनों का हिस्सा। ये चीज है, इसलिए मैंने बात शुरू की थी कि बेटा देने वाला भी कौन, अल्लाह, और बेटी देने वाला भी अल्लाह है। बहुत सारे मुझसे सवाल करते रहते हैं, बेटियां हैं बेटा नहीं, कोई तावीज दे दो। सुनिए बात, बेटियां ही बेटे हैं, बेटियां पैदा हो और उनको बेटे की ख्वाहिश होती है। अंबिया ने बेटी की ख्वाहिश की, रब्बी ला तज़रनी फर्दा वअंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह एक लड़का दे दे ताकि मेरा वारिस बने दीन को फैलाने में। तमन्ना है, मांगा किसने नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मांगा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह पाक और साले औलाद अता फरमा। हाँ, तो सूरत यूसुफ को उसी अरबी में एक कागज पर बारीक हुरूफ से लिखे, उसके हुरूफ पूरी सूरत, फिर उसको बंद कर दे और अपने पास रख ले, अपने तकिए में या अपने गले में रख ले, तो इंशाअल्लाह बेटियों के बाद उसको लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा। और इसी तरह अल्लाह का एक नाम है या मतीनू, या मतीनू, उसको अपनी उंगली से इस तरह पर रखकर पेट पर रखकर घुमाए, अल्लाह उसको लड़का अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात है 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, हमने इस सुन्नत को छोड़ दिया। सबसे बड़ी सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई जरूरत पेश आती थी, जब भी कोई डिफिकल्टी आती थी, जब भी कोई परेशानी आती थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते और मुसल्ले पर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ते थे और उस आयत की तरफ, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्ताईनू बिस्सब्री वस्सला, यहां तक के घर में किसी का इंतकाल होता पहले 2 रकात पढ़ते और उसके लिए मगफिरत की दुआ करते थे। क्यों, ये इंतकाल का होना ये भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 2 रकात पढ़ते थे। सहाबी फरमाते थे कि मेरा इंतकाल हो तो एक काम करना, तुम लोग एक जगह खड़े होकर 2-2 रकात पढ़ लेना, अपने लिए भी मगफिरत की दुआ करना, मेरे लिए भी मगफिरत की दुआ करना। सबसे बड़ा काम है, अगर औलाद न हो, बच्चों की शादियां न हो, परेशानियां हो, तो अल्लाह के सामने वुजू करके 2 रकात नमाज पर, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े और पढ़ने के बाद गिर गिरा कर अल्लाह के सामने दुआ करे और अल्लाह ताला से मांगे कि या अल्लाह मुझे ये जरूरत है, मुझे अता फरमा। अल्लाह का खजाना खाली नहीं है और खाली नहीं होगा, बड़ा हुआ है। मांगने वालों की कमी है, मांगने वाले लेजी है, मांगने वालों में यकीन नहीं, मांगने वालों में ईमान की कमी है। जब भी जरूरत पड़े, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला एंड परफॉर्म टू रकात नमाज एंड आस्क अल्लाह तबारक व ताला सिंसियरली, से अल्लाह यू ग्रांट मी सो एंड सो थिंग्स आई नीड इन माय लाइफ एंड यू आर द ग्रांटर, अल्लाह यू ओनली गिव द पीपल, देयर इज नो वन। अल्लाह कह रहे हैं मैं देने पर आऊं तो कोई रोक नहीं सकता और मैं लेने पर आऊं तो कोई दे नहीं सकता। इसलिए जब भी जरूरत पड़े, दैट वी लर्न टू थिंग्स, दैट वी नेवर एवर गेट्स एंग्री ऑन आवर डॉटर्स, वी लुक आफ्टर आवर डॉटर्स, गिव देम द नॉलेज अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इस्लाम, लुक आफ्टर हर, ब्रिंग हर अप अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्या होगा उसे? फरमाया तीन चीजें मिलेगी, जहन्नम से बच जाओगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वही बेटी तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने के लिए दीवार बन जाएगी। नंबर दो, जन्नत में जाएंगे, यू विल एंटर इन जन्नत। नंबर थ्री, यू विल एंटर विद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जन्नत। दिस थ्री थिंग्स इट्स मेंशन्ड हदीस। लड़का भी नेमत, लड़की भी नेमत, दोनों को। ऐसा नहीं लड़के से खुशी, लड़कियां हो तो नाराजगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आज से कुछ महीनों पहले एक औरत आई थी, उसने मुझे बताया कि बस मेरे यहां लड़की है, अभी पैदा नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे ही बता दिया। तो शौहर ने कहा कि लड़की हो तुझे तलाक है। वही मेंटेलिटी है जमाने जमाने जाहिलियत की। सो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आज का जो मौजू था कि बेटियां अल्लाह की नेमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है, इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों की इस्लाम के मुताबिक परवरिश करें और उनको दीन का इल्म सिखाएं। इंशाअल्लाह यही बेटियां हमारे लिए नेमत बन जाएगी, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमा। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिक वल अज़ीम सुल्तानिक, या अरहमर राहिमीन, या ذل الجلال والإكرام, या हन्नान या मन्नान, या बदीअ السماوات والأرض। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐ अल्लाह जो हमारे आखिरी नबी है, ऐ अल्लाह उन पर हज़ारों लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों दुनिया के तारों से ज़्यादा, दुनिया के दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, ऐ अल्लाह दुनिया के ज़र्रों से ज़्यादा, ऐ अल्लाह दुनिया के इंसानों से ज़्यादा, फरिश्तों से ज़्यादा, ऐ अल्लाह हज़ारों बार हमारी तरफ से सलात व सलाम हो आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी सुन्नत पर चलने वालों में से हमें बना दें। उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ सच्ची और पक्की हमारे दिलों में बिठा दें। अल्लाह दिल में खौफ खुदा आ जाए, सर से लेकर पैर तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आ जाए। ऐ अल्लाह ऐसी ज़िंदगी हमें नसीब फरमा, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से नफरत अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा। ऐ अल्लाह शैतान हमारा दुश्मन है, ख्वाहिशात हमारी दुश्मन है, ऐ अल्लाह वो हमसे दो कदम आगे हैं। ऐ अल्लाह इन दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा, इन दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा। आँखों के गुनाह, कानों के गुनाह, अल्लाह जबानों के गुनाह, दिमागों के गुनाह से, हाथ और पैरों के गुनाहों से, हर किस्म के गुनाहों से हमारी आल औलाद की उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह मरते दम तक ईमान पर कायम दायम फरमा। मौत आए लाहुल आलमीन ईमान पर मौत नसीब फरमा देना, ईमान पर मौत नसीब कर देना, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब कर देना। या अकरमुल अकरमीन हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा, हमें अपनी औलाद की परवरिश इस्लाम के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी नौजवान औलाद इस्लाम से दूर जा रही है, दीन से दूर जा रही है, ना नाम के मुसलमान बन रहे हैं,
काम इस्लाम से दूर हो रहे, दीन के काम से दूर हो रहे, अल्लाह उनको दीन से करीब फरमा, दीन से करीब फरमा, तेरे प्यारे हबीब की सुन्नतों से करीब फरमा, अल्लाह तेरे प्यारे हबीब की सुन्नत और उनकी मोहब्बत नसीब फरमा, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना, हमारी आँखों के सामने उनको दीनदार बना, अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आँखों के सामने कुर्रत आइन बना, या अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा सुलहा खादिम कुरान आलिम कुरान दीन के दाई पैदा फरमा, लाहुल आलमीन या रहम राहिमीन, जो बात कही जाती है सुनी जाती है अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मरकज़ों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह जहाँ जिस तरह दीन की लाइन से काम हो रहा है अल्लाह सारे दीन के काम करने वाले शोबों को कबूल फरमा, अल्लाह जो जिस तरीके से तेरे नबी अलैहिस्सलाम का दीन फैला रहा है हर एक की हलन चलन हरकत और नरकत को कबूल फरमा, लाहुल आलमीन दुनिया आखिरत में निजात का जरिया बना, या अल्लाह लोग दूर दूर से सुन रहे हैं रिसीवर के जरिए मिक्सर के जरिए, लाहुल आलमीन सबको कबूल फरमा, सबको आफियत नसीब फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह इस्लाम के मुताबिक हमें अपने औलाद की परवरिश की तौफीक नसीब फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी खैर की दुआएं मांगी है उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा, जितने शुरूर से पना मांगी है उससे हमारी हमारी आल औलाद की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, और पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा, व सल्लल्लाहु तआला अला सैयदना मुहम्मद व आलिही व सहाबीही अजमईन।